நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய
நரம் சேவா நரோத்தமம் தேவிம் சரஸ்வதிம் யாசம் ததோ ஜயமுதீரேத் நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா. பகவதே உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ஆஸ் பிரதக்கால் சத்ருமே ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆத்மஸ் கந்த் பிரம்மாண்டிக சிருஷ்டிக நிவர்த்தன் பிரதம அத்தியாய அத்தியாய நாம் பிரம்மாண்டிகே பிரசாசக மனு ஸ்லோக் சங்கே 11 கே பாரே மே சர்ச்சா கரேங்கே. யம் பஷ்யதி ந பஷ்யந்தம் சச்சுர் யஸ்ய ந ரிஷ்யதி தம் பூத நிலயம் தேவம் சுபண்ணம் அமுப தாவத. யம் பஷ்யதி ந பஷ்யந்தம் சச்சுர் யஸ்ய ந ரிஷ்யதி தம் பூத நிலயம் தேவம் சுபர்ணமுபதாவத. யம் பஷ்யதி ந பஷ்யந்தம் சச்சுர்யஸ்ய ந ரிஷ்யதி தம் பூத நிலயம் தேவம் சுபர்ணமுபதாவத். யம் பஷ்யதி ந பஷ்யந்தம் சச்சுர்யஸ்ய ந ரிஷ்யதி சம்பூத நிலயம் தேவம் சுபர்ணமுபதாவத. சூரியஸ்ய ந ரிஷ்யதி சம்பூத நிலயம் தேவம் ஸ்வபன்னாமுபதாவத. யம் பஷ்யதி ந பஷ்யந்தம் நரிஷ்யதி பூத நிலயம் தேவம் யம் பஷ்யதி ந பஷ்யந்தம் பஷ்யதி ந பஷ்யந்தம் சச்சுர்யஸ்ய ந ரிஷ்யதி தம் பூத நிலயம் தேவம் ஸ்வபர்ணமுபதாவ. மாதாஜி யம் ஜிஸ்கோ பஷ்யதி ஜீவ் தேக்தா ஹை நா நஹீ பஷ்யந்தம் சதைவ தேக்தே ஹுயே சச்சு ஆங்க யஸ்ய ஜிஸ்கி நா கபி நஹீ ரிஷ்யதி காம் ஹோதி ஹை தம் கம் ஹோதி ஹை தம் உஸ்கோ பூத நிலயம் சாரி ஜீவோ கா மூல ஸ்ரோத் தேவம் பகவான் கோ சுபர்ணம் ஜோ மித்ர கே ரூப் மே ஜீவ் கே சாத் சாத் கர் ரஹதா ஹை. உபதாவதா ஹர் ஏக் கோ பூஜனா சாஹியே. அனுவாத் ததா தாத்பர்ய ஸ்ரீல பிரபாத் த்வார ஸ்ரீல பிரபாத் கீ ஜய். யத்யபி பகவான் விஸ்வ கே காரியகலாபோ கோ நிரந்தர் தேக்தே ரஹதே ஹை கிந்து உன்ஹே कोई नहीं देख पाता। फिर भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उन्हें कोई नहीं देखता अतएव वे भी उसे नहीं देखते। स्मरण हो रहे कि उनकी देखने की शक्ति में कभी ह्रास नहीं होता, अतएव प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन परमात्मा की पूजा करें और जो प्रत्येक जीव के साथ मित्र रूप में सदैव रहते हैं। तात्पर्य कृष्ण की स्तुति करते हुए पांडवों के माता श्रीमती कुंती देवी ने कहा, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्भार्यस्थिताम। हे कृष्ण, आप हरेक के अंदर तथा बाहर निवास करते हैं, फिर भी बुद्धिहीन बुद्धजीव आपको देख नहीं पाता। भगवद्गीता में कहा गया है कि ज्ञान चक्षुओं के द्वारा भगवान को देखा जा सकता है। इन ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाले को गुरु कहते हैं। अतएव हम निम्नलिखित श्लोक से गुरु को प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया यच्चोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अपने गुरु को सादर नमस्कार करता हूं जिन्होंने ज्ञान के दीप से मेरी उन आंखों को खोल दिया जो अज्ञान के अंधकार से अंधी हो गई थी। गौतमी संत है। गुरु का कार्य शिष्य की ज्ञान रूपी आंखों को खोलना है। जब शिष्य अज्ञान से देखकर ज्ञान प्राप्त करता है तो वो भगवान को सर्वत्र देख पाता है, क्योंकि भगवान वास्तव में सर्वत्र है। अन्नांतरस्थ परमाणु चरांतरस्थम, इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त जीवों के हृदय के भीतर भगवान, यहां तक कि परमाणु के भीतर भी निवास करते हैं। चूंकि हमें पूर्व ज्ञान का अभाव है अतएव हम ईश्वर को देख नहीं सकते, किंतु थोड़े से सोच विचार से हम ईश्वर को सर्वत्र देख सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। थोड़े से सोच विचार करते अधम से अधम व्यक्ति भी ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति कर सकता है। यदि हम इस पर विचार करें कि ये विशाल सागर किसकी संपत्ति है, ये विशाल भूखंड किसकी संपत्ति है, आकाश किस तरह टिका हुआ है, आकाश में किस तरह लाखों तारे तथा ग्रह टिके हुए हैं, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया और ये किसकी संपत्ति है, तो हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सभी वस्तुओं का कोई स्वामी है। जब हम किसी भूखंड पर व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार तथा राष्ट्र के रूप में स्वामित्व का दावा करते हैं, तो हमें ये भी विचार करना चाहिए कि आखिर हमें उसके स्वामी किस तरह बने। ये भूखंड हमारे जन्म के पूर्व बीच वही था तो फिर ये हमारी संपत्ति कैसा बना। ऐसा विचार विमर्श हमें ये समझने में सहायक होगा कि हर वस्तु का एक परम स्वामी अर्थात भगवान होता है। परमेश्वर सदा जागृत रहता है। वृद्धावस्था में हमें वस्तुओं को भूल जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर बदलते रहते हैं, किंतु क्योंकि भगवान का शरीर नहीं बदलता अतएव वे भूत वर्तमान तथा भविष्य को स्मरण रखते हैं। कृष्ण ने भगवद्गीता 4वां अध्याय प्रथम श्लोक में कहा गया, इमं व्यवस्थते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। मैंने कम से कम 4 करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्यदेव से ये ईश्वर ज्ञान भगवद्गीता कहा था। जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि वे इतने पहले घटी घटनाओं को किस प्रकार स्मरण रख सकते हैं, भगवान ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, उस समय तुम भी उपस्थित थे। चूंकि अर्जुन कृष्ण का सखा है अतएव जहां जहां कृष्ण जाते हैं वहां वहां अर्जुन भी जाता है, लेकिन अंतर यही है कि कृष्ण हर बात को स्मरण रखते हैं जबकि अर्जुन जैसा जीव परमेश्वर का सूक्ष्म कण होने के कारण भूल जाता है। अतएव ये कहा गया है कि भगवान की चौकसी में कभी कभी नहीं आती। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 15वां अध्याय 15वां श्लोक में कही गई है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। परमात्मा रूप में भगवान सारे जीवों के हृदय में सदैव निवास करते हैं और उन्हीं से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। इस श्लोक में सुपर्णम शब्द से इसी का संकेत मिलता है जिसका अर्थ है कि मित्र। अतएव श्वेताश्वता रूपं चेत चौथा अध्याय चतुर्थ श्लोक में कहा गया, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम पश्यस्व जाते। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी मित्रों के रूप में बैठे हैं, एक पक्षी वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा केवल देखता है। ये देखने वाला पक्षी खाने वाला पक्षी के मित्र रूप में सदैव उपस्थित रहता है और उसे उन वस्तुओं का स्मरण दिलाता है जो वो करना चाहता है। इस प्रकार यदि हम दैनिक मामलों में भगवान पर विचार करें तो हमें उन्हें देख सकते हैं या कम से कम उनकी उपस्थिति की अनुभूति सर्वत्र कर सकते हैं। छछुर्यस्त नरिष्यति शब्दों को भावार्थ यह है कि यद्यपि हम उन्हें देख नहीं सकते किंतु उनका अर्थ ये नहीं कि वे हमें नहीं देख सकते। न ही जब विराट विश्व का संहार होता है तो वे मरते हैं। इस प्रसंग में उदाहरण दिया जाता है कि जब सूर्य रहता है तो सूर्य प्रकाश रहता है, किंतु जब सूर्य नहीं रहता या हम सूर्य को नहीं देख सकते तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि सूर्य विनष्ट हो गया। सूर्य फिर भी रहता है किंतु हम उसे देख नहीं सकते। इसी प्रकार यद्यपि हम अपने वर्तमान अंधकार में या ज्ञान के अभाव में भगवान को नहीं देख सकते तो भी वे हमारे कार्यकलापों को देखते रहते हैं और सर्वदा उपस्थित रहते हैं। वे परमात्मा के रूप में साक्षी तथा उपदेशक उपदृष्टा तथा अनुमंता है। अतएव गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए एवं प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए हम ये समझ सकते हैं कि ईश्वर हमारे समक्ष उपस्थित हैं और हर वस्तु को देख रहे हैं, यद्यपि उन्हें देखने के लिए हमारा पास आंखें नहीं है। ओम अज्ञान चिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगं लंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापुरांतकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनाललिता श्रीयुचाकान्तं च। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनाम्ने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्यदेशकारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वत्सस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ध्येयं सदा परिभवग्नाभिष्टदोहं तीर्थास्वदं शिव विरञ्चिनुतां शरण्यं भृत्यात्तहं प्रणतपाल भवाब्धिपोदं। वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं श्रीरामाशरणं समस्तजगतं रामं विना का गति रामेणाप्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामास्त्रासति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामे त्वमेवाश्रया। वांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ రామ. సమస్త భక్తగణులకు హరే కృష్ణ. అప్సరిగో శ్రీ శ్రీ రాధా రాసు గారి లతా విశాఖ సీతారామ లక్ష్మణ్ గోనేత యొక్క ఆశీర్వాదకు ప్రాప్తు. భాగవశ్రవణ్ అత్యంత పరం పుని హై, కళ్యాణమయ మంగళమయ సబ్ కుచ్ హై. ఇది జీవన్ కా లక్ష్య భగవాన్ ని జిస్ ఉద్దేశ్య మనుష్య జీవన్ దియా హై ఉసి ఉద్దేశ్య పూరా కన్నా హై తో భగవత్ వాణి భాగవత్ సున్నా అనివార్య హై. అగర్ హమ్ భాగవత్ నహీ సునేంగే, భగవాన్ కే లీలామయ కథాఓ కో నహీ సునేంగే, మనుష్య ఔర్ పశు మే కోయి అంతర్ నహీ హై. భావ శ్రవణ్ కన్నా భగవాన్ కా భక్తి కన్నే కా అర్థ హీ మనుష్య మే అన్య జీవో మే ఏక్ హీ అంతర్ హై కి మనుష్య శరీర లేనే కా పశ్చాత్ సే భగవాన్ కా భక్తి కర్ సక్తా హై, అన్య శరీర మే భగవాన్ కా భక్తి కా కోయి సాధన నహీ, సంభావనా నహీ హై. యహాన్ తక్ కే దేవతా భీ లలాయిత రతే హై కి హమే కితనా దౌర్భాగ్య హై. పాంచో స్కంద 19 అధ్యాయ మే పఢ్ లీజియే, దేవతా అప్నా సోచతే హై హమ్ కితనా దౌర్భాగ్య హై కి హమ్ స్వర్గ మే జన్మ లియా, హమ్ భక్తి నహీ కర్ సక్తే హై. ఔర్ యే ఇన్ లోగ్ కితనా భాగ్యశాలి భారత భూమి మే జన్మ లియే హై, భగవాన్ కా భక్తి కర్తే భగవత్ ధామ్ జా సక్తే. శ్రీ శ్రీ రాధా రాస విహార్ జీ కి జయ, సీతారామ లక్ష్మణ్ కి జయ, నిరాయ గౌర హర్ కి జయ. వో భీ బడా హమేషా పస్తాతే హై క్యూంకి వో కోయి పుణ్యకర్మ కర్నే కే బాద్ కుచ్ ఆనంద్ మాంగతా థా భగవాన్ సే, భగవాన్ హమే సుఖ సంపదా దే దో, ఉనికి ఇచ్చా థా ఇస్లియే భగవాన్ బోలే జాఓ స్వర్గ మే ఆరామ్ కరో. యది వో పుణ్యకర్మ కర్తే హుయే యే పూచే భగవాన్ హమే భక్తి ప్రదాన్ కరో, ఫిర్ భక్తోం కా సాంగత్ చమానా థా. జైసా ఆప్ సభీ ఆయే హై సత్సంగ్ మే, సత్సంగ్ మే భీ సభీ నహీ ఆ సక్తా. సత్సంగ్ మే వహీ ఆతా హై కై జన్మం కా సంచిత్ పుణ్య కర్మ జాగృత హోతా. భాగ్యోదయేన బహు జన్మ సమర్జితేన సత్సంగమం తలపతే పురుషో యదా వై. బహు జన్మ కై జన్మం కా సంచిత్ పుణ్య కర్మ జాగృత హోతా తబ్ జాకర్ ఉస్ జీవ కా భాగ్య ఉదర్ హోతా హై ఔర్ ఏ భక్తోం కా సాంగత్ మాతా. హరి భక్తి సాధువే వహీ సాధు హీ సత్సంగ, సాధు కా సంగత్ కా నహీ సత్సంగ హై. ఫిర్ సాత్ కా తో ఔర్ హో జాయేగా, ఉస్కా చర్చా కరనా తో ఏ ఇస్కా చర్చా భగవత్ చర్చా సమాప్త హో జాయేగా, లంబా హై ఇస్కా. సాధు వహీ కహా జాతా హై జో సత్ కా సాత్ రహతా హై. సత్ అర్థ హై, సత్ కా అర్థ క్యా హై, ఉస్కా కభీ భీ ఆభాస నా హో తినో సమయ మే, భూత్ భవిష్య వర్తమాన్ మే. జబ్ సృష్టి థా సృష్టి నహీ హై, సృష్టి సమాప్త హోనే కా బాద్ భీ, సృష్టి సే పహలే సృష్టి కే బీచ్ మే సృష్టి సమాప్త హోనే కా బాద్ భీ జో విద్యమాన్ హోతే వహీ సత్ హై, శాశ్వత హై. ఔర్ వహీ కౌన్ హై, భగవాన్ శ్రీ హరి కృష్ణ. ఉస్కా సాత్ సాంగత్య కర్నా హీ కర్నే వాలా సాధు హై, సంత హై. జబ్ హమ్ ఉస్కా సాత్ సాంగత్య లేతే హై వహీ సత్సంగ, అన్యథా కోయి నహీ హై. ఆజకల్ తో బోలేంగే హమ్ జువా భీ ఖేల్ రహే సత్సంగ కర్ రహే హై, ధీరె ఇధర్ సంగ శబ్దం కా ప్రయోగ అలగ్ అలగ్ హో రహే హై, క్యూంకి హమ్ జువా ఖేల్ రహే బోల్ రహే తో పోలీస్ అరెస్ట్ కరేగా, ఇధర్ సత్సంగ కర్ రహే తో కోయి పతా నహీ హై. శబ్దం కా ప్రయోగ బడా విచిత్ర ఢంగ్ సే హో రహా ఆజకల్ జమానా, కలియుగ హై. తో యే సత్సంగ్ మే ఆనా భీ జైసే కి సభీ భక్త లోగ్ హై, కోయి నయా భీ ఆతే హై, యే సాధారణ బాత్ నహీ హై. కేవల్ జో సత్సంగ్ మే భాగ్ లేతే హై అనిచ్ఛాపూర్ణ భీ, ఔర్ ఉస్కో కమ్ సే కమ్ ఇతనా గ్యారంటీ హోతా కీ వో నరక్ మే నహీ జాయేగా, బాకీ తో కైసే భీ హో. ఆప్ లోగ్ పఢా హోగా రామనవమి కే ఉపలక్ష్య మే స్కంద పురాణ సే రామాయణ కా మహత్వ మే ఏక్ కథా ఆ జాతా హై, ఏక్ వ్యాధ ఔర్ ఉస్కా పత్ని పూరా జీవన్ పర్యంత చోరీ కర్తే రహే, బోలా హోగా జీవన్ పర్యంత ఐసా కామ్ నహీ జైసే కి అజామిల్ జైసే సమస్త పాప కర్మ కా ఐసా కోయి కర్మ నహీ వో నహీ కియా హో. ఔర్ ఏక్ దూసరా భీ స్త్రీ వో భీ వ్యాధ థా నిషాద్ థా, అంత మే ఆయా దోనో పతి పత్ని రూప్ మే థే, बगल में वशिष्ठ महर्षि का आश्रम था, चलो जाएंगे, कोई भक्त लोग तो साधारण होते, उधर जाकर करने बैठने से चोरी भी हो सकता है या तो कुछ तो प्रसाद मिलेगा, ये नहीं कि कथा सुनेंगे। उनको मालूम है कि चैत्र मास है, अभी कथा चल रहा, वो जाएगा अनिच्छा से, गया तो भाव अलग था, लेकिन उधर कथा सुनते सुनते 9 दिन के पश्चात उधर ही देहांत हो गया। उसके देहांत के पश्चात जो है अगले जन्म में विश्व पूरा वसुंधर का साम्राट बन गया, और दोनों पति पत्नी, जहां ये तो व्यास दोनों निषाद थे दोनों ही, परंतु अगले जन्म में दोनों की और पिछले जन्म का स्मृति था, इसलिए निरंतर श्री राम रामायण पाठ करना, सीता राम लक्ष्मण का पूजा करते थे। जब भांडक महर्षि पूछा, भाई आप लोग क्या बात है, मैं जब आए इतना दिन तुम लोगों के पास बैठा हूं और आप तो हमेशा भगवान का राजपाल तो बात करते नहीं है और केवल रामायण पढ़ते रहते हो, राम भक्ति भक्ति करते रहते हो, इसके विषय को थोड़ा बता सकते हो? तब अपना पिछले जन्म का एक कहानी बता देते हैं। कहने का अर्थ है कि जो अनिच्छा से भी भगवान का कथा सुनते सत्संग करते हैं उसका फल लाभदायक होता है, कम से कम इतना गारंटी होता है कि वो यमराज उसके पास नहीं आएगा, क्यों बोले भाई ये तुम तो हमारे क्षेत्र से नहीं है। इसलिए भागवत श्रवण भक्तों का संगत बड़ा लाभदायक, आध्यात्मिक तथा भौतिक रूप से दोनों से लाभदायक है। यदि कोई चाहता है कि हमारा भौतिक लाभ हो तभी मिलेगा, आध्यात्मिक लाभ है तभी मिलेगा, कुछ भी लाभ नहीं चाहते तब भी मिलेगा। भक्त नहीं चाहते ना, भक्त जो हरि हरिभक्त वैष्णव है, विशेषता जो चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रपाद हमें सिखाया, हम भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं। भगवान से क्या चाहते हैं? केवल राधा रस विहार प्रसन्न होना चाहिए, है ना? हमारा भाव जो गोपी भाव है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आराध्यो भगवान प्रदेश तनया तत्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रज वधु वर्गी नया कल्पिता। जिस प्रकार व्रज वधु गोपियां जिस भाव से भगवान श्री कृष्ण को आराधन किया है, उसी प्रकार हम भी उसी का फॉलोवर है, हमारा भाव भी विप्लम्ब भाव से, गोपी भाव से हम भगवान को पूजा करते हैं। अर्थ है भगवान से कुछ नहीं, केवल भगवान के लिए श्री कृष्ण का राधा रास विहार प्रसन्न हो बस, नहीं हमारे कुछ प्रसन्नता नहीं, उनका प्रसन्नता ही हमारा प्रसन्नता। इसलिए समस्त यशोदा माता, समस्त गोपियां, व्रजवासियां, गोप गोपी सभी शत 100 वर्ष तक विरह को संभाला, कष्ट भोगा मानसिक रूप से, लेकिन कभी कृष्ण के लिए नहीं बोला तुम आ जाओ। कृष्ण को जिसमें पसंद है, आनंद है, बोलते ठीक है, यदि हमें छोड़कर तुम वृंदावन जाने तुम्हारे को पसंद है, उसमें तुम्हारा प्रसन्नता है, ठीक है, हम पूरा विरह में आग में जलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे मुख में किसी प्रकार का वाणी देखना नहीं चाहते हम, हमेशा प्रसन्न, जिस मुखड़ा खिला रहता है हमेशा प्रसन्नता रहता है, उस प्रसन्नता बना रखना है, तो हम कष्ट है, तो हमारा भाव यही है। तो भागवत में भी यही सिखाता है कि हमारे को प्रेममय भक्ति करने का सिखाता है। इसलिए धीरे धीरे अध्याय में सब भगवान के लीला से पढ़ते पढ़ते हम उस स्थान तक पहुंचने के ही ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य है कि भगवत वाणी समझते धीरे धीरे जिस उद्देश्य भगवान ने इस मनुष्य शरीर दिया, उस उद्देश्य को पूरा पूर्ति हेतु हम श्रवण करते हैं, जप करते हैं, सब कुछ है। यम पश्यति न पश्यन्तं चतुर्यस्य नरिष्यति नाभूतनिलयं देवं सुपर्णमुपधावत। यम पश्यति न पश्यन्ति, भगवान तो निरंतर हमारे देखते हैं, ऐसा कोई क्षण नहीं कोई बोलते अरे मैं ये काम कर रहा हूं क्यों कोई नहीं देख रहा, असंभव नहीं है। भगवान तो निरंतर साथ परमात्मा स्वरूप हमारा हर कार्य को निरीक्षण करते रहते हैं, और विश्व में 11 साक्षी हमेशा। इसलिए यमराज के पास जाते हैं ना, हमारा कोर्ट जैसा विटनेस को बुलाओ, कोर्ट के सामने विटनेस किराए के लिए बैठे रहते हैं, लेकर लो लो सबको मालूम है किराए वाला है, लेकिन विटनेस विटनेस है, लेकिन यमराज के दरबार में कोई विटनेस का नहीं होता। चित्रगुप्त तो लिखते हैं जो लिखा है रामगोविंद स्वामी इस क्षण में, एक इस क्षण में ये बैठा, ये बोला, ये किया, और वो विटनेस कौन कौन था, 11 विटनेस फटाफट लिख, कितना स्पीड में लिखता होगा सोचो, एक अकेले ने पूरे विश्व हर प्राणी का लिखते हैं, जानवर का नहीं लिखते, केवल मनुष्यों के करो लिखते हैं, बाकी के लिए नहीं लिखते। क्यों क्यों नहीं लिखते हैं? देवताओं का क्यों नहीं लिखते हैं, पशुओं का क्यों नहीं लिखते, केवल मनुष्य क्यों लिखते हैं, हमें जानना जरूरी है क्यों लिखते हैं, कौन बोल सकते? भैया जो मनुष्य शरीर है कर्म भूमि है, जो कर्म इस शरीर से करते हैं उस कर्म को भोगने के लिए 13 भुवन है। देवलोक में कोई खेती बाड़ी नहीं होता, अन्यत्र कोई भी कर्म करने की जरूरत नहीं, जो कर्म मनुष्य शरीर से करते उस कर्म फल को भोगने के लिए समस्त लोक है। अर्थ है कि आप स्वर्गलोक में रहो, पाताल लोक में रहो, ब्रह्मलोक में रहो, इसका इस शरीर में जो काम किया है उसका फल उधर भोग रहा हो। पद्म पुराण श्वेत महाराज इसको उदाहरण के लिए कथा आ जाता है। तो इसलिए केवल मनुष्य शरीर से आप क्या सिद्ध क्या प्राप्त करना चाह सकता है मनुष्य शरीर में, बाकी जितने भी शरीर है वो पनिशमेंट का समझो, समझ रहे पनिशमेंट। ऑलरेडी जो जेल में है उसके ऊपर क्या लिखना, जेल तो पड़ा बेचारा, मनुष्य योनि में शरीर मनुष्य नहीं है, सर्प योनि मिला, पशु योनि मिला, कोई किमिकादि योनि मिला, कोई देवता शरीर मिला है, उनको तो किया हुआ कर्म के अनुसार मिला हुआ है, सजा भुगत रहे हैं। परंतु मनुष्य शरीर ऐसी है, ये भी एक सजा ही है, परंतु मनुष्य शरीर में जो हम काम करते हैं उसके प्रकार हमारे को फल मिलेगा। पाप कर्म करेंगे आराम से फिर दोबारा नरक में जाएंगे, पुण्य कर्म करेंगे फल की इच्छा मांगते आराम से स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हर भगवान का श्री हरि भक्ति करते हैं समर्पण कर प्रपद भक्ति करेंगे भगवत धाम जाएंगे। ये तीनों केवल मनुष्य शरीर से संभव है और किसी शरीर से नहीं है, कुछ विशेष देवताओं को छोड़कर समस्त देवताओं को भी, यहां तक इंद्र को भी कभी कभी मनुष्य शरीर धारण करके हरिभक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं, चाहे कोई भी मजहब हो कोई भी हो, हरेक जो भगवत धाम जाना चाहते हैं वो सबको इस मनुष्य शरीर लेकर सनातन धर्म पालते हुए श्री हरि का भक्ति करते हुए भगवत धाम जा सकता है, अन्य और कोई उपाय नहीं है। हरेक के लिए सनातन धर्म छोड़कर बाकी सबके लिए मोक्ष का अर्थ है स्वर्ग है, उनका ग्रंथ भी पढ़ो, यू विल गो टू हेवन, स्वर्ग है, स्वर्ग ही उनका अंतिम लक्ष्य है। परंतु हमारे लिए छीने पुण्य मृत्यु लोक में शांति, हमारे लिए स्वर्ग यहां थे कि हमारा जो ध्येय मोक्ष से भी परे। थोड़ी सिद्धांत में जो चैतन्य महाप्रभु हम सिखा रहे हैं, जिसका अभ्यास हम कर रहे हैं, ये तो मोक्ष से भी परे है। पंचम पुरुषार्थ है प्रेमा पुमार तो महान, इसलिए भगवान निरंतर जीव का हरेक कार्य देखते रहते हैं। और कोई बोलता है कि भगवान देख रहे हैं, क्या प्रूफ है हम भगवान को देखे, यदि हमें देख रहे हैं मैं भी उनको देखना चाहिए, जैसा आप मेरे को देख रहे हैं मैं आपको देख रहा हूं। बहुत सी सारी चीज है हम देख नहीं सकते, हम सभी को मालूम है हमारा मन है बुद्धि है, मानते हैं ना, कोई बोलेगा हमारे बुद्धि नहीं है, हरेक बोलेगा अपना आपको बुद्धि है कि नहीं, कोई बुद्धि को देखा कोई अभी तक अपना मन को कोई देखा, फिर क्यों नहीं बोलते मेरा माइंड नहीं है, माइंड नहीं तो फिर मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ये भौतिक है तब भी नहीं देख सकते हैं, और इधर भौतिक रूप में इस समय कोई कीटाणु नहीं दिखता, छोटे छोटे जीव, परंतु माइक्रोस्कोप ले होगे तो ऐसे हजारों लाखों में रहेगा, आप पैर रखने के भी भय करेगा। भौतिक वस्तु होते भी ये भौतिक चक्षु से हम नहीं देख सकते हैं, इस भौतिक चक्षु से उस परमात्मा को कैसे देख सकते हैं जो चिन्मय है। भगवान चिन्मय है तो भगवान चिन्मय को देखने के लिए हमारा आंखें भी उस स्थाई पर आना चाहिए। उस स्थाई पर जब हमारा आंख आ जाएगा कैसा आ जाएगा, श्रृण्वताम सा कथक कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय अंतस्थो यद्राणि विदनोति सुरसताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिक। ये एक विधान है, प्रोसेस है, भक्तों का सांगत्य में भगवान का कथा सुनना है, भक्तों का जितना सांगत्य लेंगे जितना रुचि से हम भगवान का कथा सुनेंगे हमारे जीवन में अमल करेंगे उसी के अनुपात से हमारा इंद्रिय सब शुद्ध हो जाएगा। भगवान निरुपाध है। यदि हम भगवान का प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं, मनुष्य भी निरुपाध होना अनिवार्य है। अब जब तक हम निरुपाध नहीं होते भगवान का पद नहीं बन सकते। अब निरुपाध होने के लिए जीव गोस्वामी बोलते हैं सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषि के न ऋषि के सेवनम भक्ति रुच्यते। तो पूरा भागवत का उद्देश्य यह है कि किस प्रकार जीव जो है निरुपाध बने, भगवान का प्रिय बने, भगवान का साथ रहे, बस पूरा भागवत का उद्देश्य है और कुछ नहीं। यत्र ज्ञान विराग भक्त सहितम नष्कर्म आविष्कृतम तत्सुनवन सुफलन। अंत में बोलते हैं ना भागवत में, केवल भागवतम यत्र ज्ञान विराग भक्त सहितम, इधर परमात्मा संबंधित ज्ञान, जब भगवान के संबंधित ज्ञान का अर्थ है उसमें भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ज्ञान सम्मिलित है। भौतिक ज्ञान में भगवान का ज्ञान नहीं है, वो तीन चार पीएचडी करेगा, हु आर यू, आई एम सो एंड सो पीएचडी, डॉक्टर सो एंड सो पीएचडी, बट हु आर यू, ओ यू डोंट नो आई एम सो एंड सो, आई एम इंडियन, आई एम अमेरिकन, हु आर यू, मैं नहीं मी सो एंड सो, वो लेकिन हु आर यू कभी नहीं बोलेगा वो, लेकिन इसको उनका भक्त बोल हु आर यू, बोलता आई एम द, वट बोलेगा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। उनको मालूम नहीं रहेगा आत्मा क्या है परमात्मा क्या, उनको मालूम नहीं क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता है। परंतु जब भगवान का ज्ञान संबंधित भागवतम समस्त पुराण पढ़ेंगे समझेंगे दोनों चाहिए, तब आप बात बोल सकता है कि ये सृष्टि कैसा हुआ, करोड़ों रुपया खर्च करके अभी तक सृष्टि कैसा नहीं हुआ समझा नहीं है, दो साल पहले आप पढ़ा होगा, अंत में निर्णय में आ गया। साइंटिस्ट बोलते हैं गॉड पार्टिकली द काज ऑफ दिस क्रिएशन, इसलिए प्रपद भागवत में 1965 में लिखे हैं, हमारे शास्त्र पहले से बोलते हैं गॉड पार्टिकली द काज ऑफ द क्रिएशन। अब इतना अरबों खरबों पद्म इतना खर्च करके अभी अंत में आ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा पुराण तथ्य केवल तथ्य ये मिथ्या नहीं है, जैसा गोरे लोग बोलते माइथोलॉजी, भारत संस्कृत को भारतीय कोई भी ग्रंथ को उन लोग मानने का तैयार नहीं अहंकार के कारण। तो हमारे पढ़ाई का मूर्ख लोग भी बोलते मैथोलॉजी बोलते हैं, उसको ये भी मालूम नहीं कि हिस्ट्री क्या होता है मैथ क्या होता है। एक बोल रहा था कि भाई ये तो अगर हिस्टोरिकल है आपका पुराण, हिस्टोरिकल तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, एक लिंक होना चाहिए। मैं बोला तुम महामूर्ख है, ये पुराण जो है तुम्हारा हिस्टोरिकल क्या करते, तुम तो लॉजिकल अप्रोच करना चाहते हैं ना, पुराण अप्रोच के लिए नहीं है। पुराण इसी इस प्रकार कहा जाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस भाव से कहा जाता है, पहले धर्म बताएंगे उसके बाद काम मोक्ष बताएंगे, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष यही हमारा इतिहास है। पुराण ये नहीं कि और भी पढ़ो और आराम से परिवार में रहो, 10-15 बच्चे पैदा करते रहो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, लेफ्ट राइट कैसा भी हो इसे रहो, ये नहीं है। पुराणों के ही है कि किस प्रकार मोह माया से निकलकर उस परम साथ शाश्वत परम साथ भगवान के पास जाएं जिस धाम से हम आए हैं। इसलिए बोलते यत्र ज्ञान विराग भक्त सहितम, वैराग्य जब तक भक्ति भी आना चाहिए, ज्ञान और विराग दोनों भक्ति का पुत्र है। जब बोलते हैं क्या है भाई ये बहुत अच्छा भक्त आगे बढ़ रहा लेकिन पैसा तो छोड़ता नहीं है, परिवार के पीछे उसके बिना नहीं होगा, फिर कैसा विराग आ गया। दोनों चाहिए, ये नहीं बोलते परिवार छोड़ो नहीं, परिवार में रहते हुए भी ना रहे। आचार्य लोग बोलते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जैसा तो ये है कि उस प्रकार जीवन करना, इस बताने के लिए बताते हैं कि उस परमात्मा को विश्वास करना चाहिए। ये नहीं कभी नहीं सोचना कि भगवान देखते नहीं है, भगवान सभी देखते हैं, उपदृष्टानवंताचा परमात्मा स्वरूप में हर जीव का हरेक कार्य को देखते हैं। जब तक भगवान हमें अनुमति प्रदान नहीं करते हम कोई काम करने में हमारी क्षमता नहीं है। आत्मा है शरीर जीवित रहेगा बढ़ेगा चढ़ेगा, लेकिन जब हम कोई काम करना है मन किसी जीव में प्रज्ञा है केवल परमात्मा का कारण है। परमात्मा के बिना प्रज्ञा भी नहीं आ सकता, आप सोच नहीं सकते क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, ये परमात्मा का कारण है। हम सोच भी सकते हैं कुछ कर सकते हैं। जहां विराट पुरुष का व्याख्या किया तीसरा स्कंध में आप उधर पढ़ लीजिए। जब भगवान चित्त में प्रवेश किया तब जाकर विराट पुरुष जो है कुछ काम, समस्त देवता बोलते हमें पता नहीं हम क्या काम करना। इसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय में वास करते तब जाकर हम कुछ काम करने की क्षमता रहता है। इसलिए यदि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उन्हें कोई नहीं देखता अतः वे भी वे भी उसे नहीं देखता। स्मरण रहे कि उनकी देखने की शक्ति में कभी ह्रास नहीं होता। भगवान को तो हजारों आंखें हैं। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्रात बोलते हैं ना पुरुष सूक्त में, तेरा अध्याय में भगवान इसी श्लोक को बोलते हैं। भगवान के एक आंख नहीं अर्थ है, सहस्त्र ऐसे हजार आंख का अर्थ है कि सर्वत्र देख सकते हैं। ये अलंकार युक्त भाषा है। सर्वत्र भगवान का हजारों आंख अर्थ है कि भाई सर्वत्र देख सकते हैं। बोलते हैं ना अरे भाई ये तो ये टेम्पल प्रेसिडेंट जो है चारों ओर से देखते रहते हैं, चार पांच आंख है उसको। नहीं चार पांच नहीं अर्थ है उनके इतना क्षमता है कि कहीं भी कुछ काम होता उनको मालूम होता। इस प्रकार भगवान का सामने कोई भी छुप नहीं सकता। पूरा विश्व एक विश्व नहीं है, हजारों विश्व है। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत में कुछ भी हो रहा हमेशा उनका निरीक्षण होता। मतलब प्रपात देते हैं उदाहरण के लिए उस आंख को खोलना है, बोलते हैं कि फिर भी बुद्धिहीन बद्धजीव आंख को देख नहीं पाता। भगवान को हम क्यों नहीं देख पाते हैं? कारण यह है कि हमारा चक्षु चर्म चक्षु है, भौतिक है ना चक्षु। भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, भगवान का आत्मा चिन्मय है, शरीर भी चिन्मय है। हमारा आत्मा चिन्मय है, हमारा शरीर भौतिक है, पदार्थ है। तो हमारा भी उस शक्ति आना चाहिए। जिस प्रकार लोहे को आग में डाल रखने से जैसे जैसे गर्म होता जाएगा कुछ द्रव्य निकलता, देखा होगा लिक्विड रूप में, वो उसके अंदर जो मैल होता निकलता रहता धीरे धीरे। जैसे जैसे वो मैल निकलेगा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। जब पूरा गर्म हो जाएगा लाल लाल होकर तो होता ही नहीं, देखा होगा ना। अब जब लाल हो गया अब सोचो भाई ये तो लोहा है बोलकर पकड़ने से क्या होता है, जलेगा ठंडा रहेगा, अच्छी तरह से जलाते हो। अर्थात जब उसका में कोई भी मैल नहीं रहा, उस समय में कोई कलमश नहीं रहा, उस समय में लोहा होते भी अभी भी लोहा है लेकिन समस्त अग्नि का गुण आ गया। इसी प्रकार जीव भी जब भगवान का भक्ति करते करते सतोगुण से पार कर विशुद्ध सतोगुण प्योर मोड ऑफ गुडनेस में जब आते हैं उस समय में इस जीव भौतिक छच्चु होते भी उस भगवान को देख सकते। जब तक हम रजो तमो सतोगुण में रहते हैं, ममा मामे से रहते हैं, उपाधि में रहते हैं, भगवान को देख नहीं सकते, परंतु अनुभूत कर सकते हैं विश्व को। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद लिखा है विश्व तारा इतना तारा मंडल में सब देख के, परंतु भगवान को देखना है। जो भगवान हमें देख रहे हैं हम उनको देखना चाहते हैं, तो रजो तमो सतगुण से पार होकर विशुद्ध सतगुण में स्थित होना चाहिए। जिस प्रकार भगवान ने बोलते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समारोता। योगमाया क्या है? ये पर्दा है, इनविजिबल कर्टेन, अदृश्य रूप से जो कर्टेन है वो योगमाया का कर्टेन, रजो तमो सतगुण का पर्दा है। और जब तक कि जीव रजो तमो सतगुण में रहेंगे भगवान को देख नहीं सकते, परंतु जैसे ही इसको पार करेंगे विशुद्ध सतगुण में आ जाएंगे उस समय इसी भौतिक शरीर से भगवान को देख सकते। जिस प्रकार जयदेव गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, ये सभी आचार्य लोग है उस स्थिति पहुंचे थे। इसलिए जब भी ध्यान मग्न हो जाएंगे भगवान को उस लीला को देखते थे फिर लिखते थे। जयदेव गोस्वामी रसिक भक्त है, इसलिए जब भगवान का ध्यान करेंगे तुरंत राधा कृष्ण यमुना पुलिन में नृत्य करते हुए, क्यों रसिक भक्त है, जिस भाव से भगवान को उपासना कर रहे हैं वही भाव दिखा देगा फिर लिखते थे। जिस प्रकार लोहा होते भी अग्नि का पूरा गुण आया है, इस प्रकार भगवान भक्त भी भगवान का भक्ति करते करते उस स्थान तक पढ़ने का पहुंचने का पूरा संभावना है। इसलिए भगवान बोलते हैं ग्यारह स्कंद का ग्यारह अध्याय में पचपन श्लोक में मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता जो भी कर्म किया, जब भगवान उसमें व्याख्या में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण कर्म करो। हमारे जीवन जो कुछ कार्य है केवल राधा रास विहार के प्रसन्न उस भाव से हरेक काम करें, धीरे धीरे सत्संग संगत में रहते हुए भक्ति का पूरा सिद्धांत को हम अवलंबन करें, तब जाकर धीरे धीरे एक दिन गुरु कृपा हरि कृपा से जीव भी उस स्थान तक पहुंच सकता है। असंभव नहीं है, बहुत सारे उदाहरण है। महाराष्ट्र में तुकाराम गोस्वामी देखिए, आप लोग सभी सजीव गया था। आज भी मैं सुना कि आप लोग गए होगा, आप सब महाराष्ट्र के हैं। जब गया था उधर बोलते हैं कि जिस दिन गौरपूर्णिम का बाद दूसरा दिन है शायद, जिस दिन वो अपना वैकुंठ गए थे, जिस पेड़ के नीचे गए थे, जब गरुड़ जी आए थे पेड़ हिल रहा था। आज भी उसी मुहूर्त में वो पेड़ आधा घंटा से पहले बहुत जोर से हिलता, और बास बास में कोई भी पेड़ हिलता नहीं बोलते। केवल उस दृश्य को देखने के लिए लाखों आदमी आते बोलते हैं। वो पुजारी बोलता है, स्वामी जी आप आइए, हमारा हम साथ रखकर दिखाएंगे। बोला भैया मायापुर से कहां आ सकते, तुरंत मायापुर में तो गौरपूर्णिम को रहना जरूरी है। तो कहने का अर्थ है कि सब कुछ संभव, असंभव कुछ नहीं, हम उस स्थान तक स्थाई तक पहुंचना चाहिए। इसलिए उस स्थाई तक पहुंचने के लिए क्या कौन है सहायता करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरु, गुरु करते हैं। गुरु को परसों दो दिन पहले भी मैं बोल रहा था, नवयुगेंद्र भी बोलते हैं गुरु को हम ऐसा करना है, गुरु को आराधना आत्मदेवता, साक्षात आत्मदेवता, साक्षात भगवान समझकर हम गुरु को उस भाव से हम करना। गुरु कभी हमारा मित्र नहीं है, हमें इसे ध्यान रखना। कोई बहुत सारे को होता है, ओ मैं तो गुरुमार से फ्री बात करता हूं, गुरुमार से जब भी जाकर मिलूंगा, अपराध है। गुरु को कभी मित्र ना समझे, हमारे हितेशी हो, जहां मित्र भाव से जाएंगे। इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है, फैमिलियरिटी ड्रिंक्स, हम लोग बोलो कॉन्टेम्प्ट। जहां भी ज्यादा फैमिलिटी आ गया, फिर हम उसको गुरु भाव से नहीं देखेंगे, मरण धर्म शरीर भाव से देखेंगे। वो हमारे जैसे ही है, वो भी उनको भी भूख लगता है, मेरे को भूख लगता है। और जिस समय हम गुरु को उस भाव से देखा, हमारा भक्ति भाई स्थगित नष्ट हो जाएगा। लाखों यत्न कर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं भागवत में, कई दफा इस गुरु का बोले, नमस्कार 11 स्कंद में पढ़ लीजिए। भगवान बोलते हैं आचार्य माम विदानी त ना अवमान करचित ना मर्च बुद्ध असूय त सर्व देवमय गुरु। ये अज्ञान तिमिरांधस्य पूरा काम तब करेगा जब भगवान अमर गुरु को ना मर्च बुद्ध असूय था, जब तक इस भाव नहीं रहेगा ये अज्ञान तिमिरांधस्य कोई काम नहीं करेगा। अरे गुरु को अपना मरण धर्म जैसे हमारा जैसे शरीर धारी समझे, फिर तो वहीं पर कुछ नहीं होगा। लेकिन गुरु कभी नहीं सोचेगा कि मैं भगवान हूं। शिष्य का काम है गुरु को भगवान तुल्य समझकर आदर सत्कार आज्ञा मानना सेवा करना है, पर गुरु कभी नहीं बोलेगा। स्लपपल लिखते हैं, बट गुरु नेवर थिंक दैट इज गॉड, इफ थिंक्स इज अ गॉड रीड फ्रॉम अपोजिट। क्या होता है अपोजिट में, डीओजी डॉक्टर साहब हो जाएगा, गार्ड साहब को छोड़कर डॉक्टर साहब हो जाएगा। तो गुरु कभी नहीं, गुरु हमेशा सोचते मैं तो राधा राशि दास हूं, सेवक हूं। इस भाव से ये अज्ञान तिमिरांधस्य कभी काम कर सकता है जब हम गुरु को उस भाव से हर कार्य को देखते रहे। हमसे हमारा भाव नहीं होना चाहिए कि गुरु का हर आज्ञा साक्षात भगवान श्री कृष्ण का आज्ञा है। शिष्य के साथ जब गुरु कोई आज्ञा देते, कोई बात करते हैं, उसमें निस्वार्थ होता है। गुरु के अंदर कोई स्वार्थ नहीं रहता। यदि गुरु के अंदर कोई स्वार्थ है, वह गुरु का लहन करने लघु हो जाता है। गुरु निस्वार्थ भाव से केवल अपना शिष्य किस प्रकार अपना उनका आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े, उनका एक ही चिंतन रहता है और कुछ नहीं रहता। गुरु का कार्य शिष्य के ज्ञान के आंखों को खोलना है। जब शिष्य अज्ञान से जगकर ज्ञान प्राप्त करता है तो वो भगवान का सर्वत्र देख सकता है। कैसे देख सकते हैं, जब तक हम भगवान को देखने की क्षमता हमारा आंख में नहीं रहता, सृष्टि को देखते हुए भगवान को देख सकते हैं। दूसरा स्कंद में जहां चतुश्लोक की भागवतम भगवान ने समझाया बताया, भगवान क्या बोलते हैं, सृष्टि से पहले मैं अकेला ही था और मैं सृष्टि किया, अब सृष्टि समाप्त होने पर मैं अकेला हूं। भाई तुम अकेला ही थे, इतना पहाड़ इतना विश्व इतना जीव कैसा पैदा कर दिया, ये कहां से आ गया। प्रश्न होता है ना, अब मकड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्पाइडर को, क्या बोलते हैं मकड़ी, हाँ मकड़ी जब चलता है उसके पास साइड बैग है क्या हमारा जैसा, साइड बैग सुई धागा लेकर घूमता है, कोई साइड बैग नहीं ना, भक्तों लोग हर एक पास साइड बैग नहीं तो बीट बैग तो जरूर है, कुछ न कुछ बीट बैग, चाबी डालो पैसा डालो सब कुछ डाल सकता है बेचारे मकड़ी के पास कुछ भी नहीं रहता, लेकिन जहां चलेगा यहां से लेकर वहां तक चलेगा, जैसे जैसे चलेगा उधर से लेकर जाली बनाते जाएगा, हम नहीं बना सकते उस ढंग से, कहां से आया धागा, धागा कहां से आया सोच रहे, समझ आ रहा है कहां से धागा आया कहीं, और जब वापस जाना है तो पूरा निगल लेगा, अर्थ है कि जो अपने ही वो मकड़ी जो है जो जाली है उनका शक्ति है उसको रूपांतर हुआ, बस उतना ही है, जिस प्रकार हम इसी जमीन से हम धान भी मिल जाता है, इसी जमीन से लोहा भी मिलता है, इसी जमीन से जहर वाला पत्ते भी मिल जाता है, इसी जमीन से आम का स्वादिष्ट फल भी मिल जाता है, इसी जमीन से वज्र भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, है क्या है सभी, इस जमीन का रूपांतर है और कुछ नहीं, मिट्टी का रूपांतर अलग अलग भाव से आ रहा है, इसी प्रकार जो है भगवान जब सृष्टि करते हैं भगवान ही स्वयं अपना आप का ऐसा विस्तार करते हैं, कभी जीव बन जाते कभी पशु बन जाते, कभी 11 स्कंद में मेरे ख्याल में 12 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं, ये उद्धव अभी तक जो मैं से सुने हो आगे जो कुछ सुना है सबको भूल जाओ, ये बोलते हैं पढ़ लो 12 अध्याय में 4 या 5 श्लोक में बोलते हैं कि सब भूल जाओ, समझो कि सब कुछ दृश्य में जो कुछ भी है केवल मैं हूं, उस भाव में भक्ति भी आ जाए, धीरे धीरे जब भगवान का भक्ति करते हुए निर्पाद भाव से आ जाएंगे, शुद्ध भक्ति हमारे मन में हो जाएगा, उस समय विश्व में हर जगह राधा रास विहार देखेंगे और कुछ नहीं देखेगा, सिया राम में सब जग दानी करम प्रणाम जोर जोग पाने, कहीं भी देखोगे राधा कृष्ण वही है, सच में अवश्य वही है, शक्ति और शक्तिमान का विस्तार है पूरे विश्व में और कुछ भी नहीं है, उस स्थाई में आने के लिए इसलिए बोलते हैं कि प्रपा लिखते हैं कि विश्व में जो कुछ भी देखते हो सोचो भगवान की शक्ति नहीं तो इतना ग्रह ऊपर मंडल में हा? लाखों तारे हैं कैसा लटक रहे हैं, एक बच्चा पूछा था हा? कई साल पहले 1990 में सर, एक छोटा बच्चा बोलते ये मेघ जो है आकाश में कैसा लटक रहा, तो इतना ग्रह हमारे भूमंडल से एक कोई ग्रह छोड़ देते हैं ना, इंडिया भी बहुत सैर कर रहे हैं, अब उसको चलने को ऊपर जाना कितना किलोमीटर के बाद किस डायरेक्शन जाना है, उस सर एक अनपढ़ आदमी गांव वालों को बोलेगा भाई अपना पूड़ रहा, लेकिन जो पढ़ा लिखा है कम्युनिकेशन किया हुआ है इंजीनियरिंग किया है उसको मालूम है वो सैटेलाइट तो जा रहा परंतु नियंत्रण के लिए इंडिया में 4 स्टेशन है, अर्थ स्टेशन बोलते हैं, अहमदाबाद में दिल्ली में बेंगलुरु में 4th किधर है नहीं श्री एयरपोर्ट लॉन्चिंग पेड़ है अर्थ स्टेशन में वो 4 है जो के एक जो सैटेलाइट जैसा अपना कक्ष में रखने के लिए यत्न करते रहते हैं वो 4 हमेशा निरीक्षण करते रहते हैं, मैं दिल्ली अर्थ स्टेशन में 6-7 महीने काम किया था मुझे मालूम है वो किस प्रकार जा रहा पूरा हर एक आपको पता चलता है, जब आज वो नहीं रहता किसी को पता नहीं चलेगा वो किस एंगल में जा रहा कैसे जा रहा को जाकर एक्सचेंज भी कर सकता, जिस प्रकार हम सैटेलाइट उपग्रह छोड़ने के बाद भी नीचे से कोई नियंत्रण कर रहा तभी अपना कक्षा में रहता है, आधा डिग्री भी कक्षा से बाहर हो गया बहुत अच्छी तरह से एक्सीडेंट हो सकता है, और सोचो हजारों तारामंडल में है इतना ग्रह जा रहा कौन नियंत्रण कर रहा है कि को हर एक अपना अपना कक्षा में रहता है, ऐसा कौन है कि कभी एक शनि नीचे आएगा तो दूसरा ग्रह शुक्र ऊपर जाएगा, ये नहीं कि भाई चलो आगे चलो तुम रास्ता बदलते हो मैं भी क्यों बदलू एक्सीडेंट कर, ऐसा नहीं है, कौन कर रहे हैं कोई ना कोई नियंत्रण कर रहा है, अर्थ है कि सभी इसलिए प्रपा लिखते हैं कि ये सब देखते हुए हम सोच सकते हैं देयर समबडी हु इज कंट्रोलिंग, ऐसा कोई व्यक्ति अव्यक्त व्यक्ति है जो हम नहीं देख सकते हैं जो कर रहे हैं वो अव्यक्त है जो शक्ति जिसको पूरा समस्त ग्रहों को कंट्रोल कर रहा, जिस शक्ति के कारण सूर्य जो है टाइम पर उदय होता समय असमय हो जाता है, चंद्रमा आते हैं जाते हैं, ऋतु अपने समय पर आते जाते हैं, वो अव्यक्त व्यक्ति का शक्ति है, भगवान है सत्यम परम धीमहि। उस भाव से देखें जिस रूप में पर धीरे धीरे भक्त भगवान का भक्ति करते करते भगवान है। अभी हम देखें उनका शक्तियों को देखा अप्रत्यक्ष रूप में, जिस प्रकार भगवान जो है सर्वव्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन हम भगवान को उस रूप को देखना चाहते हैं, उसके रूप को स्वयं रूप देखना चाहते हैं। तो भगवान ने श्रील प्रपद हमें ऐसा सुंदर ढंग से भगवान का भक्ति प्रदान की है। भगवान भगवान भी अब प्रपद ही है, भाई आम को दे रहा हूं खा लो, अभी खाना या फेंकना हमारा हाथ में है। ऐसा भक्ति का सुंदर ढंग से बड़ा सुलभ ढंग से समझा दिया हमें। मालूम बचपन में हम किसी को बोलते थे पुजारी को भक्ति कैसा होता है, वो बोलते हैं तुम लोगों से नहीं होगा, आओ पूजा करो हम आशीर्वाद देंगे तुम चलो, कोई नहीं बोलते हैं। आप देख कोई भी किसी का भी ग्रंथ पढ़ो, श्रील प्रभुपाद जो भक्ति के बारे में जिस ढंग से सुलभ ढंग से समझा दिया, और कोई लिखकर समझाए तो बोलो उसके बाद लिखा होगा, इसको उनकी किताब पढ़कर बहुत सारे दूसरे धन वाले लिखते जा रहे हैं अभी, यहां तक कि इस्लाम वाले भी अभी भगवद्गीता लिखा है, उन लोग भी व्याख्या लिखा है कलकत्ता में कहे, हो सकता है इसको भक्त हो। कहने का अर्थ है कि वो सभी धर्म वाले भगवद्गीता भी पढ़कर समझ रहे, जो प्रपाल की किताब पढ़ने से सब समझ में आ रहा उसको हमारे समन्वय कर रहे हैं उनका धर्म के साथ। प्रपाल हमारा को इतना सुलभ ढंग से भक्ति करने के समझाया और कोई नहीं है, उस इतना ही करें बस काफी है। भगवान श्रील प्रपाल बोलते हैं रोजाना अच्छी तरह से अटेंटिव चैनलिंग, यानी टोटल 16 माला नहीं बोल 16 माला ऐसा नहीं है, अटेंटिव चैनलिंग गुड चैनलिंग बोले श्रील प्रपाल। भक्तों का संगत में जितना हम भक्तों का संगत में रहेंगे, जितना भक्तों से सुनेंगे, उसको हमारे जीवन में अमल करेंगे, अवश्य एक दिन गुरु प्रसन्न हो जाएगा, गुरु प्रसन्न से हरि भी प्रसन्न हो जाएगा, हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो सकता है। परमेश्वर सदा जागृत रहता है, बद्धावस्था में हम वस्तुओं को भूल जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर बदलते रहते हैं, हम बद्ध जीव है इसलिए सब बदल जाता है शरीर, जैसे शरीर बदल गया इस शरीर के अंदर जो कुछ स्मृति है निकल जाता है। परंतु जब बद्ध जीव से जीव मुक्त निश्चय जीव हो जाएगा तो मुक्त जीव हो जाएगा, अर्थ है जो योगी समाधि अवस्था तक पहुंच जाते हैं, जो भक्त जो तुरीय अवस्था में जाते हैं अर्थ है शुद्ध अवस्था में आ जाते हैं, विशुद्ध सत्वगुण में आ जाते हैं, फिर वो सब कुछ याद रहेगा लेकिन उससे इच्छा नहीं रहता। महात्मा लोग कहते हैं कि ये भूत भविष्य जानने का अर्थ क्या है, जैसे कि हम मैं इधर नीचे खड़ा हूं तो दीवार के पीछे क्या है वो और अपने रस्ते में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसी बिल्डिंग में 500 टावर पर खड़ा हूं, टावर बिल्डिंग में जगह 5 मंजिल के ऊपर खड़ा हूं, इधर क्या हो रहा उधर क्या हो रहा सभी दिखाई देता कि नहीं, बस उतना ही है। आत्मा जब शुद्धावस्था आकर जब उस स्थाई पर ऊपर पहुंच जाएगा उसको भूत भविष्य दिखाएगा, जब तक आत्मा भौतिक प्रकृति का बंधन में रहकर निम्न अवस्था में रहेगा हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। शुद्ध अवस्था में रहकर ऊपर साहित तक पहुंचने का अर्थ है धीरे धीरे रदो तमो सतोगुण को पार करके विशुद्ध सतोगुण माना चाहिए, ये यदि हम उसका यत्न नहीं करेंगे फिर तो नहीं। इसलिए भक्ति में भी हम आशा को कम करते जाना चाहिए, हम लोग सब भक्ति मार्ग में है थोड़ा बहुत आगे को जाने का हम सबको यत्न कर रहे हैं, जितना आशा आता है एक एक आशा सचमुच ये मेरे जरूरी है, अब जरूरी नहीं तो मैं क्यों लूं। अब जब तक आशा को कम नहीं करेंगे संतुष्ट नहीं रहेगा, आशा ही परम दुखम नैरस्यम परम सुखम, और जितना आशा कम हो जाएगा उतना हम आनंद रहेंगे, धीरे धीरे हम अवश्य ही सत्वगुण में जाएंगे और उसमें भी कोई आशा नहीं रखें, कोई इच्छा ही नहीं रखें, केवल इच्छा है कि कैसा राधा रास विहार प्रसन्न करूं, अवश्य एक दिन भक्ति भी विशुद्ध सत्वगुण में प्रवेश कर सकता, असंभव नहीं है। भगवान जो कुछ हमारे सिखा रहे हैं असंभव कुछ नहीं, संभव आना है। कलयुग में तो पूरा भगवान इतना छूट दिया 95% से ज्यादा डिस्काउंट दिया हमारे को, थोड़ा ही परिश्रम करना चाहिए, बाकी टाइम में 5% भी डिस्काउंट नहीं दिया था बेचारे, सत्युग में 1% भी डिस्काउंट नहीं आया, लेकिन हम लोग को ज्यादा डिस्काउंट दिया है। अतएव ये कहा गया कि भगवान चौकीसी में कभी कमी नहीं आती, इसकी पुष्टि भगवद्गीता में करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान जो है हमारे हृदय परमात्मा स्वरूप में रहते हुए हरेक को देखते हैं, भगवान की कृपा से मेरे को स्मृति है विस्मृति भी है। इसलिए यदि हम अच्छे तरह से ज्ञान याद रखना है, जीवन का सब कुछ पढ़े हैं याद करना है, स्टूडेंट्स के लिए भी भगवान का भक्ति करो, कभी भूलेगा नहीं है। कभी कभी अनुभव किया होगा पढ़ाई समय में, रात में पढ़ते सुबह एग्जामिनेशन में वही आ गया, अरे रात में पढ़ा था जब, लेकिन लिखने जाता तो आता नहीं। अनुभव किया होगा ना, मैं तो कई दफा अनुभव किया था, इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स करते थे रात में, अरे बहुत किया था रात में लेकिन कैसे करूं नहीं आता। तो भगवान की कृपा विस्मृति है, लेकिन हम भगवान का भक्ति करेंगे तो मेरा पार्टी का है, चलो इसको स्मृति देता हूं। इसलिए भगवान का पार्टी का बनो अर्थ है भगवान का भक्त बनो, विस्मृति रहेगा नहीं है। हर एक आदमी अपना अपना पार्टी वालों का रक्षा करते हैं ना, कांग्रेस वाला कांग्रेस वाला बीजेपी को, हम कृष्णा का पार्टी है, हमारे गुरु महाराज बोलते हैं आम आत्मा पार्टी, हम आम आदमी का नहीं, आम आत्मा पार्टी कौन है, रास बिहारी जी है, सर्वात्मा है ना, तो हम उन पार्टी के लिए भगवान तो हमारे को रक्षा करेगा। जब उस स्थिति में आ जाएंगे तब देख सकते हैं। छछुर यसन ऋषद शब्दों का भावार्थ यह है कि यद्यपि हम उन्हें देख नहीं सकते किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वो हमें नहीं देख सकते। नहीं, जब विराट विश्व का संहार होता है तो वे मरते हैं, अर्थ है कि ये बहुत ही भगवान हमेशा हमारे को देखते हैं, निरंतर देखते रहते हैं, हो सकता हम उनको नहीं देखें, इसलिए हम उनकी बहुत ही छछु से नहीं देख सकते। इसलिए भगवान इस अर्थ विग्रह रूप में दर्शन देते ताकि उसको देखते देखते हुए हम इंद्रियों को शुद्ध करके उसके अंदर भगवान को देखें। ये तो विशेष सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में पत्थर में भी हम भगवान को देखते हैं, दूसरे भगवान में पत्थर को देखते हैं, इसलिए वो उनको अजय रहेगा। ये तो विशेष है, ये वैदिक धर्म है, उसको देखते हुए हमारा शुद्ध हो जाएगा, इसमें परमात्मा है। बाद में जब हम शुद्ध हो जाएंगे उसी में भगवान उस रूप में हम देख सकते हैं। इसी प्रसंग में उदाहरण दिया जाता है कि जब सूर्य रहता है, जिस प्रकार बोलते हैं भगवान नहीं है, भगवान हमेशा विद्यमान होते हैं, हमेशा ही सूर्य भगवान को उदाहरण देते श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सायंकाल में इधर अस्तमय होता भगवान सूर्यदेव चला गया, कहीं नहीं गया, दूसरे स्थान में इधर हो गया, इधर रात हो गया लेकिन अमेरिका में उदय हो गया। तो भगवान तो उधर सूर्यदेव उधर ही है, इधर अंधेरा हो गया लेकिन दूसरी जगह है, लेकिन ये नहीं बोलते भगवान चले गए, कहीं नहीं जाते, भगवान हमेशा रहते हैं, हमारे आंखों से चले गए, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण था प्रकट लीला करते रहे, अपना धाम में चले गए, नित्य लीला हमेशा चलता, अप्रकट लीला वृंदावन में निरंतर चलते रहता है। जो शुद्ध भक्त उस स्थाई में आ जाते हैं और भगवान का नित्य लीला हमेशा अप्रकट लीला भी देख सकते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु आदि जितने भी नवद्वीप मंडल में नित्य अप्रकट लीला चलते रहते हैं। जब हम शुद्ध अवस्था में आ जाएंगे उस समय वो देख सकते हैं, अशुद्ध अवस्था में नहीं देख सकते। अर्थ है जब तक काम क्रोध लोभ मोह मदमाचारी में बड़े हैं, उपाधि भावना से रहते हैं, तब तक जो है हम भगवान शुद्ध रहेंगे। सबसे मुक्त होना है, मुक्त जीव का अर्थ है सभी से मुक्त हो जाएंगे तब अवश्य देख सकते हैं। इसी प्रकार यद्यपि हम अपने वर्तमान अंधकार से या ज्ञान से के अभाव में भगवान को देख नहीं सकते तो भी वे हमारे कार्यपालों को देखते हैं और सर्वदा उपस्थित रहते हैं। ये परमात्मा के रूप में साक्षी तथा उपदेशक हैं। साक्षी क्यों? उदाहरण देते कठोपनिषद से देते हैं, श्वेता श्वेता उपनिषद से देते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी है, एक देखते रहता है, एक दूसरा खाने में मस्त है, दूसरा पक्षी देख रहा, वो पक्षी को बोलता है अरे भाई हमेशा खाते रहो मेरे तरफ देखो, वो देखने का नहीं मस्त है खाते हुए। हम भी है, परमात्मा बोलते हैं अरे भैया तुम हमेशा कार्यकलाप करते कर दो, थोड़ा मेरे तरफ ही मुंह करो। जिस समय वो जीव जो है भगवान के तरफ मुंह कर लिया भगवान को देख सकते हैं, और जो भाग्यशाली है भगवान के तरफ मुंह कर लिया देख लिया भक्त बन गया, जिसका दौर्भाग्य है भगवान के तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं तो पच्ची बोले कर, खाते रहो खाते रहो, तो खाते रहेगा खाते रहेगा, बस जन्म मृत्यु जरा व्याज में रहेगा। लेकिन बुद्धिमान है जो भाग्यशाली है वो भगवान की तरफ देखेगा, भगवान का शरणागत हो जाएगा। और जिस समय भगवान का शरणागत हो जाएंगे, भगवान का समक्ष किस प्रकार का कष्ट नहीं होता भगवान। अतएव गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए, हमें प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए हम ये समझ सकते हैं कि ईश्वर हमारे समक्ष उपस्थित है और हर वस्तु को देख रहे हैं। कैसा देख सकते हैं? जिस प्रकार विश्व में हर एक चीज देख सकते हैं, किसने इस आम का पौधक बनाया, ये बीज को कौन बना दिया, आम का बीज छोटा बीज डालते हैं इतना बड़ा कैसे हो गया, कौन सा शक्ति से हुआ। साइंटिस्ट बहुत बोलते हैं कि हम वो बनाए बनाए, भाई एक छोटा सा बीज बनाकर देखो, जमीन में डालो वृक्ष बने हजारों फल दे दें, वो संभव नहीं है, संभव नहीं है। तुम तभी भगवान के साथ समझ बराबर तब बोलो जब भगवान का दिया हुआ कोई भी वस्तु उनको यू प्रयोग ना करते हुए कुछ तुम अपना बना दो। भगवान का पंचभूत दिया उसको लेकर वो जोड़ मोड़ फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन करके बना दिया, बोलता मैं ये बना दिया, बना दिया एरोप्लेन बना दिया, अच्छी बात है, पहले भी था अभी नहीं अभी भी था हा? लेकिन बनाने के लिए तो पंचभूत, लोहा कहां से आया, जमीन से आया, अग्नि कहां से है, भगवान का ही प्रॉपर्टी है, आकाश किसका है, ये सब लेकर बोलते कि हम अपना आप बना दिया हा? तो ऐसा नहीं है। यदि तुम सचमुच इतना भगवान का बराबर है, भगवान का दिया हुआ कोई भी वस्तु पंचभूतों का प्रयोग ना करे, उपयोग में ना लाओ, तुम कुछ अपना बनाओ, कुछ जैसा विश्वामित्र महर्षि त्रिशंकु स्वर्ग बनाया, तुम भी कुछ बनाकर दिखाओ, ऐसा करो, तुम बोलेंगे भाई तुम्हारे में ये शक्ति है, वो संभव नहीं है। तो अर्थ है कि आज के जिस प्रकार का श्लोक में ही बता रहे हैं कि भगवान सब देखते हैं, नहीं भी देखते हैं। कल का भी श्लोक, आज का श्लोक भी, ये सब तकरीबन तौर बहुत ईश्वरपनिषद के साथ संबंध है, ईश्वरपनिषद कभी ऐसे चलता है तो ऐसा कोई वस्तु नहीं भगवान नहीं देखते हैं। जो नहीं देखते इसका अर्थ है कि हम नहीं देखते हैं, अर्थ है नहीं कि भगवान नहीं है, हम भगवान को देखने का योग्यता नहीं है। तब तक हम उस भगवान को देखने के लिए योग बनते हैं, तब तक विश्व को देखते हुए, विश्व के हर चीज को समझते हुए कि भगवान की शक्ति से पूरा विश्व चल रहा है, ये पेड़ पौधा चल रहा है, समय पर ऋतु चल रहे हैं, इतना ग्रहमंडल ऊपर आकाश में स्थित है, आकाश को कौन लटका रहा, सब कुछ आकाश के अंदर है, फिर वो आकाश किसने बनाया, ये सब देखते हुए कोई ऐसा शक्ति है जिसने सब नियंत्रण कर रहा है। वो शक्ति आप कृष्ण बोलो, राम बोलो, कुछ भी बोलो, कोई भी नाम दे दो, भगवान को कोई भी नाम दो हाँ बोलेगा, क्योंकि भगवान का हरेक नाम उनका गुण को व्यक्त कर देता है। हमारा नाम हमारे गुण का कोई संबंध नहीं है, परंतु तो भगवान के जितने भी हजारों नाम है एक गुण का साथ है। यहीं पर समाप्त करते हैं, कोई प्रश्न या आलोचना बोल सकते हैं।
होता है कि भगवान हमको देख रहे हैं पर हमको स्मरण नहीं रहता है, भूल जाते हैं कि भगवान देख रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं तो भूल जाते हैं, और वो कभी महीने में एक दिन याद आता है या फिर नहीं आता है।
तभी तो अज्ञान तिमिर अहं दशा से बोला है ना, क्यों जब तक अज्ञानता रहता है हम सोचते हैं कि भगवान नहीं है, भूल जाते हैं, तो निरंतर भगवान की समीक्षा करते रहना चाहिए, निरंतर कोई भी काम कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ओह तो भगवान की शक्ति से मैं उठा रहा, हाथ उठा रहा, अन्यथा मेरे में शक्ति नहीं है। 13वां अध्याय भगवान बोलते हैं ना, हमारा जो कुछ काम करे भगवान की इच्छा से हो रहा, मैं बोल भी रहा हूं भगवान बोलते ठीक है बोलो, हर बार भगवान बोलते तू नहीं बोलेगा, मैं लाखों इतने करूंगा मुंह नहीं खोलेगा। भगवान की शक्ति वायु है ना हमारे शरीर में, अपान वायु है, उदान वायु है, उदान वायु ऐसा मेरा कंठ का अवरोध कर देगा, बस कुछ भी बोलने लगो बस वो खोलोगे लेकिन बोल नहीं पाएगा, ठीक है ना। कई बार भगवान अपने अपने शक्तियों के साथ पूरा विश्व चला रहे हैं, भगवान स्वयं कुछ नहीं करते हैं। रामायण में एक प्रसंग में आ जाता है, जब विभीषण की शरणागति में जब सभी बोल रहे हैं मीटिंग किया, विभीषण को भाई शरणागति देना या नहीं देना, सब बोल रहे हैं नहीं देना नहीं देना, सबके सब विरोध में था, और भगवान श्री राम स्वयं एक ही था, मैं दे देगा शरणागत, कंड महर्षि का रेफरेंस देते हुए। सुग्रीव अपना मन में सोच रहा भाई ये तो अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, अभी अपना मनमानी कर रहा, अभी अपना मनमानी करने से हमारे को मंत्रिमंडल आपातकाल बैठक बुलाना फिर पूछना क्यों करना हा? अभी तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध होने से पहले ही कर रहा, युद्ध में तो मनमानी करेगा, हमारा सहस्त्रों करोड़ों का जितने भी ये वानर जान गंवाने की बात है, अच्छा रहेगा इज्जत बचेगा हम यहां से निकल जाएगा, वो सोच रहा ऐसी मन में हमारे विचार है। सोचने से भगवान श्री कृष्ण तो परमात्मा, राम तो परमात्मा है उनको पता चला, बोलते हैं ये सुग्रीव मैं किसी कोई काम करने की जरूरत नहीं है, केवल मेरा उंगली दिखाने का मात्र से पूरा विश्व में जितने भी पूरा ब्रह्मांड में जितने राक्षस यक्ष है जितने भी पापी है सब नष्ट हो सकता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बोल दिया ना, मेरे किसी का सहारा जरूरत नहीं, बोलते पढ़ लेना उसमें सुंदरकांड में आ जाता है। अजय ये बोला तुरंत जो है सुग्रीव जो है चौकन हो, अरे मैं सोच रहा था भगवान को ऐसा पता चला, तब शरणागत भगवान मैं तो वानर हूं चंचल हूं जीव हूं क्षमा करो, कहने घर से भगवान को कोई करने की जरूरत नहीं, लेकिन बैठे बैठे सब उनका इतना शक्ति है, वो सब शक्ति से होता है उनका अपार शक्ति से हम समझे, बस हर समय उनका अपार शक्ति को गुणगान करते रहे, देखते निरीक्षण प्रतीक्षण करते रहो। ठीक है प्रभु, आपको उत्तर मिल गया।
हरे कृष्णा महाराज जी, हम आपने जो बताया कि विशुद्ध सत्व गुण में स्थित होना चाहिए तभी हम भगवान को देख सकते हैं भक्ति कर सकते हैं अच्छी तरह से, तो वो स्थित कैसा होना हम विशुद्ध सत्व गुण में कैसे स्थित होंगे, हमें क्या करना चाहिए
उस सत्व गुण का लक्षण क्या है?
वही
सत्व गुण का लक्षण आनंद, इसमें प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय का 17, 18, 19, 20, 21 ये पांच लोग बहुत पढ़ना चाहिए समझना चाहिए। तदाराजस्तमो भाव, जब भगवान का भक्ति करते हुए रजोगुण वाला सत्वगुण वाला रजोगुण में जाएगा, रजोगुण वाला सत्वगुण में जाएगा, सबके सब सीधा सत्वगुण में जाएगा, जब सत्वगुण में जाएगा भगवान का सेवा करने में आपका आनंद अनुभव होगा, मई मंगल आरती में जाना जो सत्वगुण में रहेगा मंगल आरती है सभी से भगवान का सेवा से भगवान से दूर कभी नहीं रहना चाहेगा, मतलब उस भगवान की सेवा में आनंद अनुभव हो जाएगा वही है, लेकिन वहां तक ही रुकना नहीं चाहिए, सत्वगुण में भी थोड़ा हमारा कुछ इच्छा रहता है मैं भगवान का सेवा कर रहा हूं मेरे को ये मिलेगा भगवान का सेवा और मिलेगा वैकुंठ में जाऊंगा, इच्छा तो इच्छा ही है, उससे विशुद्ध सत्वगुण है किसी प्रकार कोई इच्छा रही संपूर्ण इच्छा रही तो होना चाहिए, यहां तक तब वो तब ही संभव है, जैसा शरणार्थ कर उसका छह अंगों का अपने जीवन अवलंबन जब तक नहीं करते हैं सत्वगुण को पार नहीं कर सकते हैं, उस भाव तक पूरा स्थित होना चाहिए जिस प्रकार आठवां श्लोक बोलते हैं ना शिक्षाष्टक में, आश्लिष वापादरतम पे नष्टमान अदर्शनान मर्म हतम करो तो यथा तथा वा वेतधात लंपटो मत प्राणनाथ, मेरे को आलिंगन करो तिरस्कार करो फिर भी आप मेरा पूज्य नहीं है, मेरे जीवन में सुख है दुख है मेरे क्या करना, सुख दुख जो है कष्ट और सुख जो है शरीर से संबंधित है, मैं तो शरीर नहीं हूं, दिन आएगा रात जाएगा रात जाएगा दिन आएगा सर्दी मौसम जाएगा गर्मी आएगा ये तो आते जाते रहना है, मेरे क्या लेने देना है, पूर्णता शरीर भाव से मुक्त होना पड़ेगा, देहात्म बुद्धि से पृथक करना पड़ेगा, तब जाकर जब आत्मभूत स्थिति में रहते हैं शरीर भाव से मुक्त हो जाए तब हम विशुद्ध सत्वगुण में जाएंगे, तब तक नहीं जा सकते, थोड़ा भी उपाधि भाव काम क्रोध का एक भी परसेंट रहे तब तक जो है ममा मामित रहेगा हम विशुद्ध सत्वगुण में नहीं जाएंगे, सत्वगुण में अवश्य रहेंगे। सत्वगुण में भी अच्छा भाव है, सत्वगुण गुण ही है। इसलिए भगवान को निर्गुण कहने का अर्थ है भगवान हमेशा विशुद्ध सत्वगुण में रहते हैं, इसलिए वसुदेव तत्व कहा जाता है। जब तक विशुद्ध गुण में नहीं रहते हैं वसुदेव नहीं बोल सकते, उनका हमेशा विशुद्ध तत्व। भगवान श्री राम यहां तक देखिए, पूरा रामायण अभी रामनवमी चला था इसलिए बता रहा हूं, रावण से युद्ध करते थे समय भी कभी क्रोध दिखाया? अंत अंतिम क्षण तक बोलता तुम मेरे शरणागत हो जाओ, तुम्हारे को रक्षा करूंगा। तभी तो मान महाराज बोलते हैं वत्स तुम तो वैष्णव है, भक्त है, भक्तों का लक्ष्य है नहीं कि तुम किसी को ऐसा मारो। तुम्हारा भाई की एक यक्ष मारा तो तुम्हें हजारों मार दिया, ये वैष्णव का काम नहीं है। उसको तुरंत याद है, कभी कभी हम भक्त कर रहे हैं सब कुछ है, यही विशेषता है। भगवान का दर्शन से भी ज्यादा लाभ है सत्संग। दुर्योधन तो कृष्ण को तो 100 दफा देखा होगा, उसमें कोई परिवर्तन आया? भगवान का दर्शन से भी अवश्य बहुत दुर्लभ है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि आप में पूरा परिवर्तन आएगा, लेकिन सत्संग में रहेगा तो पूरा परिवर्तन आ सकता है। ध्रुव महाराज बहुत साधारण नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा क्रोध भाव रहा, क्योंकि निरंतर यदि सत्संग में रहते क्रोध भी नहीं बना था। जैसे तो उनका पिता नहीं पिता महा का थोड़ा सा आदि संगत मिला, बुद्धि जागृत हो गया है, मैं वैष्णव हूं, मैं क्रोध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, तुरंत वापस आए, क्षमा की याचना किया। इसलिए भक्ति मार्ग में हमेशा निरंतर हमारा अपना देखते परीक्षण करते रहना चाहिए और भक्तों का सांगत्य रहना चाहिए। जितना भक्तों के सांगत्य में हम रहेंगे उतने हम बच जाएंगे, नहीं रहेंगे अपाय है। प्रभु जी
धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज जी। तम भूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावत। ऊपर वाला तो बहुत अच्छा से समझ में आ गया, लेकिन ये नीचे वाला का लिंक क्या?
तम भूत निलयम देवम
जी,
तम वो पूछ रहे
हाँ, तम भूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावत, इसका मतलब जैसे
तम भूत निलयम का अर्थ क्या है? भूत निलयम समस्त जीवों का आलय है, अर्थ क्या है? परमात्मा स्वरूप में ऐसा कोई जीव नहीं है, जब तक भगवान परमात्मा स्वरूप में विराजमान नहीं होते हैं तब तक कोई जीव कुछ काम नहीं करने के लिए। इसलिए चर अचर जंगम जितने भी हो, चर अचर कोई भी है, अन्नांतरस्त परमानुचरस्त, भगवान का शक्ति के बिना पत्थर भी कुछ नहीं, पत्थर पत्थर नहीं रहेगा। पत्थर क्या है? पत्थर क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ आटम्स है ना, समस्त आटम का समुदाय है। समस्त आटमों को एक साथ रखने का कौन शक्ति है? वो जो फिजिक्स पढ़े कौन कौन पढ़े फिजिक्स? बस एक दो पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, उसमें कोवलेंट बॉन्ड बोल के एक आता है। ये जितने भी आजकल साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं कि सभी आटम है, ये आटम है, ये आटम है, हजार ये टेबल है, इसमें लाखों आटम है, ये लाखों आटम को एक प्रोपोर्शन से इकट्ठा किया, लकड़ी बना, ये सभी इकट्ठा रखने का शक्ति साइंटिस्ट बोलते कोवेलेंट बैंड। हम बोलते विष्णु, विष्णु का अर्थ क्या? सर्वव्याप्त है, ऑल परवेडिंग, इज द विष्णु शक्ति, भगवान उनका शक्ति से सबकी इकट्ठा कर रखा है। तो इस रूप में अन्नांतरस्त परमाणु चरांतरस्त अर्थ है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान नहीं, इसलिए भूत निलयम बोला है। चर अचर सभी में, केवल ये कि नहीं कि भूत जीवों में नहीं परंतु अचर वस्तु में भी चाहिए, ठीक है ब्रो। सुपर्णम उपधावता, उसमें देखिए सुपर्णम के जो मित्र के रूप में सब जीवों के साथ, क्यों मित्र रूप में रहते हैं? परमात्मा हर एक जीव को हृदय में रहते हैं, हर एक को निर्देशन देता है, हम कोई अब तो अनुभव क्या होगा, मैं आप बाजार जाना चाहते हैं, कभी कभी आ जाता है, नहीं जाएंगे छोड़ो, कोई अंदर से कुछ बोलते हैं आपको, लेकिन जब तमोगुण में रजोगुण में रहते हैं हम स्वीकार नहीं कर, अरे क्या फर, चलो देखा जाएगा, लेकिन जो सतोगुण में रहते हैं भगवान जो बता रहे हैं सुनते हैं। इस प्रकार जो है, अब रेलवे स्टेशन में है, अब कोई मित्र कॉल कर रहा, मोबाइल में रिंग आ रहा, लेकिन बात करने जाते तो कुछ सुनाई नहीं जाता, होता कि नहीं, अरे भाई बहुत आवाज है, बाहर आकर बात करता हूं, फोन में वो बात भी कर रहा रिंग आ रहा लेकिन फिर भी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टेशन से बाहर आ गया, जैसा मंदिर जैसा आ गया, शांति है और बात कर रहे, वो चिल्लाने की जरूरत नहीं, आराम से सुनाई देता, होता है। इसी प्रकार जब रजो तमोगुण में रहते हैं, हमारा उत्तेजना बहुत रहता मन में, परमात्मा स्वरूप में भगवान हमारे बता रहे हैं, निर्देशन दे रहे हैं, करो ना करो, फोर्स नहीं करेगा, आपको गाइड करेगा, क्योंकि भगवान स्वराट है, पूर्ण स्वतंत्र, हम भी भगवान के गुण हमारे में स्वतंत्रता है, लेकिन क्षण मात्र लेश मात्र में, वो लेश मात्र स्वतंत्रता में भगवान बोले तुम ये मत करो ये करो, फिर स्वतंत्रता क्या रह गया, जो थोड़ा सा स्वतंत्रता है उसको जो सत्य उपयोग करेगा भक्त बनेगा, दुरुपयोग करेगा जन्म मृत्यु पड़ेंगे। तो उसके लिए बोलते हैं कि साक्षी रूप में रहकर समस्त जीवों को उपधार, मित्र रूप में सबको निर्देशन देते हैं, लेकिन जब आप सतोगुण में रहते हैं उस निर्देशन को देख सकते हैं, उपधारण करते हैं, भगवान के द्वारा बताए हुए समस्त चीजों को अपना जीवन में लाना है। जब तक भगवान का संदेशों को अपने जीवन में अमल नहीं करेंगे, फिर कथा ही रहेगा, फिर हमारा क्या लेना है, श्रवण में सुनने गए, सुनने में अच्छा लग गया, परंतु हमारे जीवन में परिवर्तन कैसा आ गया, समझ रहे। जब तक भगवान का हर एक कथा में, हर एक श्लोक में भी एक संदेश होता भगवान का, तब भगवद्गीता कृष्ण पुराण हर एक भगवान की वाणी में संदेश होता, उस संदेश को हमारे जीवन में रखना। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, पुरुषो रामचरितम श्रवणे उपधारयन, उपधारयन बोला है, केवल सुनना नहीं है, सुनना अपने जीवन में अमल करना, अवलंबन करना, तब जाकर आनुशंस परो राजन कर्म बंधन उचित है, तब जाकर आदमी बनेगा। भगवान श्री राम का अवतार के एक ही लक्ष्य है, जीव को आदमी बनाए, बस राक्षस ना बने। तो इस प्रकार है, सर्वभूत नीलम करते परमात्मा स्वरूप में हर जीव का हृदय में वास करते हैं आत्मा के साथ। उदाहरण के लिए दो पक्षी का दिया है, और मित्र रूप सुपर्णार्थ है, मित्र रूप में आपको बताते रहते एक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भगवान को निर्देशन को स्वीकार करने की क्षमता हमारे में तब रहेगा, हम सतोगुण में रहेंगे। तमोगुण वालों को भी देते हैं, लेकिन वो तमोगुण का काम जो है आलसी लथार जो रहता है वो सुनेगा नहीं है। जैसा आपका बच्चा थोड़ा कोई लड़का, दो लड़का, एक लड़का तो आज्ञाकारी है, दूसरा तो उद्दंड है, अब आज्ञाकारी लड़कों को बोलो बेटे 9 बजे स्कूल जाना, अच्छा पिताजी बोलेगा, उद्दंड नहीं बोलते 9 बजे क्यों जाऊं, मैं जॉब चाहूंगा, मैं 8 बजे जाऊंगा, नहीं तो 10 बजे जाऊंगा, तुम कौन है बता। दोनों का आप बता दिया, लेकिन एक तो उद्दंड सुनेगा नहीं है, रजोगुण तमोगुण का पड़ा हुआ है। जो आज्ञाकारी लड़का सतोगुण में है तो पिताजी जो भी बोले करता है, वो आगे बढ़ेगा। उद्दंड जो है आज नहीं तो कल तो पुलिस का हाथ में आएगा, नहीं तो किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, किसी के नीचे तो आ ही जाना पड़ेगा उसको, होता है कि नहीं। यही प्रकार क्लियर प्रभु, समाप्त करें। श्रीमद्भागवत पुराण की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद।